أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين بعض مسلسل ظاہر ہونے والی علامتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں بعض لوگ فتنہ و فساد پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں اور گویا ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ یہ ادھار کھائے بیٹھنے کا محاورہ بھی بڑا دلچسپ ہے، جیسے کوئی کسی سے پیسے لے چکا ہو اور یہ کہے کہ یہ ادھار ہے جب تک میں تمہارا مقصد پورا نہ کر دوں اور یہ فساد برپا نہ کر لوں، مجھ پر یہ ادھار ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کن معنوں میں یہ محاورہ ان فساد پھیلانے والوں پر صادق آتا ہے، لیکن جہاں تک علامتوں کا تعلق ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے عزیز اور پیارے محبوب وطن میں فساد برپا کر دیں۔ اس کے برعکس جماعت احمدیہ کے افراد مرد و زن کا یہ تہیہ ہے، یہ عزم صمیم ہے کہ ہم نے یہ فساد برپا نہیں ہونے دینا۔ بس یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہے، اور جتنا لوگ آپ کو تنگ کریں، دکھ دیں، کوشش کریں کہ آپ کو فساد کا بہانہ بنایا جائے، اتنا ہی زیادہ صبر اور عزم کا نمونہ دکھانے کی ضرورت ہے، اور بیدار مغزی کے ساتھ، بڑی ذہانت کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ملکی حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس موقع پر تاریخ کے اس سنگم میں جس میں اس وقت ہم کھڑے ہیں کسی قیمت پر بھی فساد نہ ہونے دیا جائے۔ یہ عجیب تاریخ ہے ہمارے ملک کی، اور بڑی بدقسمتی ہے کہ جب بھی بیرونی خطرات نمایاں ہوتے ہیں بعض مخصوص طبقات لازماً ملک کے اندر فساد کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ معلوم ہیں، وہ معروف ہیں، اور ان کی تاریخ انمٹ حقائق کے ساتھ لکھی گئی ہے اس قوم کی تاریخ میں، اور سب پہچاننے والے ان کو پہچانتے ہیں، لیکن عجیب بدقسمتی ہے کہ سب دھوکہ کھانے والے پھر بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ जब भी इस मुल्क में अंदरूनी फसाद बपा हुए हैं, लाजमन हमेशा कोई बैरूनी खतरा सर पे मुंडला रहा था और अंदरूनी फसादात ने उन खतरात को तकवीयत दी। इसलिए हर मुहिब्बे वतन का फर्ज है कि वो किसी कीमत पर भी इस मुल्क में फसाद ना होने दे। जब हम ये कहते हैं कि मुहिब्बे वतन का फर्ज है तो सिर्फ पाकिस्तान के अहमद ही मेरे मुखातब नहीं हैं। तमाम दुनिया के अहमदी अपने अपने मुल्क अपने अपने वतन के मुहिब्बे वतन हैं, और हमारा ये ईमान है और ये हमारी तालीम है कि आज दुनिया की तमाम कौमों में सबसे ज्यादा सच्चाई और वफा के साथ अगर कोई अपने वतन से मोहब्बत करता है, जिसके ईमान में जुज़्वे ईमान बन गई है वतन की मोहब्बत, वो जमात अहमदिया के अफराद हैं। बस इस पहलू से अगर हम ज्यादा वसी नजर से देखें तो सारी दुनिया ही इस वक्त फसादात का शिकार है, और तमाम दुनिया में बास तखरीबी ताकतें जो बड़े बड़े अजीम मुल्कों से भी ताल्लुक रखती हैं और निस्बतन छोटे मुल्कों से भी ताल्लुक रखती हैं, वो बरसरे यानी पूरी तरह सरगर्म अमल हैं कि किसी तरह फसाद बरपा हो। बस कुल आलमी जमात का उसके मुकाबले पर फर्ज है कि अपने अपने वतन में हर वो जरिया अख्तियार करें जिसके नतीजे में फसाद दब जाए और फसाद का कोई मौका पैदा ना हो। लेकिन बहरहाल ये भी एक हकीकत है, उससे इनकार नहीं कि हमारी जमात कमजोर है, महदूद ताकत रखती है, महदूद असर रखती है, और हमारी हर अमन की कोशिश जरूर नहीं कि कामयाब हो। ये तो हो सकता है कि अहमदी सब्र का इंतहा से ज्यादा नमूना दिखाएं, लेकिन इस बात की जमानत फिर भी नहीं कि दुनिया में फसाद बरपा ना हो, क्योंकि जो लोग फसाद पर तुल जाते हैं वो अजीब गरीब बहाने ढूंढते हैं, कोई माकूल बहाना ना मिले तो नामाकूल बहाना तलाश कर लेते हैं। वो भेड़ के बच्चे और भेड़िए वाला पानी पीने वाला किस्सा भी आपने सुना हुआ है, और ये किस्सा भी सुना हुआ है कि एक दफा एक मर्द जो हर वक्त लड़ाई पर तुला रहता था, अपनी बीवी के हर काम में कोई ना कोई नक्श निकाल ही लेता था। कभी रोटी जल गई, कभी कच्ची रह गई रोटी, कभी नमक ज्यादा पड़ गया, कभी मिर्च ज्यादा हो गई, और कभी दोनों की कमी वाकया हो गई, कभी पानी गर्म कभी चाय ठंडी। उस बेचारी को तो मुसीबत पड़ी हुई थी, हर रोज हर बहाने किसी ना किसी बहाने वो फसाद पर तुला रहता था और उसको जुदूकूब करता था। तो एक दफा उस बीवी ने खूब तैयारी की, हर चीज की बहुत ही ज्यादा एहतियात की, ना नमक ज्यादा ना मिर्च ज्यादा ना कम, पानी भी मुनासिब चाय भी मुनासिब, हर चीज दुरुस्त कर दी और रोटी भी बड़ी एहतियात से पकाई। तो अपने खामन के चेहरे के आसार देखने लगी, उसने बहुत कोशिश की जहनी तौर पे कि कोई बहाना ढूंढूं, लेकिन बहाना हाथ नहीं आया। लेकिन बहरहाल फसाद तो करना था, इरादा जो था उधार खाए बैठा था। तो उसने आखिर पर यह तरकीब इख्तियार की कि बीवी से कहा कि ओ जालिम औरत, तू रोटी तो पका रही है हाथ से, तेरी कोनियां क्यों हिल रही हैं? और ये उठकर इस बात पर उसको मारना शुरू किया। खैर बीवी मार खा के बैठ गई, फिर जब वो दोबारा खाना खाने लगा तो उठने उसके दाढ़ी पकड़ ली और कहा, बदबख्त तू खाना तो मुंह से खा रहा है, तेरी दाढ़ी क्यों हिल रही है? तो अहमदी ने दाढ़ी भी नहीं पकड़नी, मैं ये आपको समझा रहा हूं, किसी अहमदी का हाथ किसी दाढ़ी पर नहीं उठेगा और किसी की इज्जत और माल और जान से नहीं खेलेगा, चाहे इंतहाई सब्र करना पड़े। हाँ, अल्लाह की तकदीर आजाद है, वो मालिक है, उसका हाथ अगर किसी दाढ़ी पर पड़ जाए तो कोई बाल बाकी नहीं रहने देती, इसलिए वो मालिक है, उसकी मर्जी है, जिसकी दाढ़ी को जलील करने के लिए चुने उसकी मर्जी है, उसमें हमारा कोई दखल नहीं। लेकिन वहां भी हमारी दुआएं अपने दुश्मनों के हक में होनी चाहिए, ना सिर्फ सब्र करना है बल्कि उनके हक में दुआएं करनी है, क्योंकि जिस पर खुदा का गजब नाजिल हो उसको मिलिया मीट कर देता है, तबाह करके रख देता है। ऐसी कौमों को माजी का निशान किस्सा बना दिया करता है। इसलिए हम तो रहमतुल लिल आलमीन के गुलाम हैं और रहमतुल लिल आलमीन के गुलाम रहेंगे। किसी की तबाही का हाल देखकर वक्ती जोश और वक्ती खुशी के नारे भी बेवकूफ लोग लगाया करते हैं। हकीकत यह है कि दुख किसी का भी हो दुख ही है, और खुदा का गजब तो बहुत ही बड़ा दुख है। दुआ ये करनी चाहिए कि हम इसको पड़ता भी ना देखें किसी पर। इसलिए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम की हैसियत से हमें लाजमन दुआएं करनी चाहिए, और हमारी दुआओं के दो रुख होने चाहिए, एक अपने लिए और एक अपने गैर के लिए। अपने लिए ये दुआ कि हम तेरी जमीन में लाजमन अमन कायम रखने की कोशिश करेंगे और हर मुमकिन सब्र से काम लेंगे, मगर ऐ हमारे आका सब्र की तौफीक अगर तू ना दे तो नहीं हो सकती, मिल ही नहीं सकती किसी को। इंसान की ताकत में नहीं है कि महज अपने इरादे पर कुछ हासिल कर ले। आप लोगों में से बास को शायद ये ख्याल आए, यानी मेरे सब मुखातबीन में से जो दुनिया में कहीं भी होंगे, कि आमतौर पर तो दुनिया की तकदीर में हम इसी तरह जारी देख दुनिया की अंदर यही तकदीर जारी देख रहे हैं कि लोग जो इरादे करते हैं, जो स्कीमें बनाते हैं और दुआ नहीं भी करते, तो उनकी तदबीरों को कुछ ना कुछ फल जरूर लगते हैं। तो ये जमात अहमदिया को क्यों खास तौर पर हर दफा तदबीर के साथ दुआ की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है? ये अहम सवाल है जिस पर मैं कुछ रोशनी अपने दूसरे मजमून से हटकर जरूर डालनी चाहता हूं। बात यह है कि अल्लाह ताला की तकदीर का इस पहलू से मैंने बड़ा गहरी नजर से मुतालिया किया है, और मैं इस कती नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो लोग जो खुदा के मोमिन बंदे हैं, जो खुदा की अपनी जमात कहलाते हैं, उनके साथ अल्लाह ताला का और सलूक है, और जो लोग दुनियादार हैं जिनका खुदा से ताल्लुक नहीं उनके साथ और सलूक है। जो कटकर दुनिया के हो चुके होते हैं उनके लिए आम कानून जारी है। जो वो कोशिश करते हैं उस कोशिश में अगर हिकमत शामिल हो, मेहनत शामिल हो, तो उसको आम दुनिया के दस्तूर के मुताबिक फल लगते रहते हैं। मगर जिनको खुदा अपना बना लेता है उनकी बार बार तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करनी चाहता है, उनको बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा हूं और मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। इसलिए उनकी आम कोशिशें भी नाकाम हो जाया करती हैं अगर वो दुआ ना करें। ऐसी कोशिशें जो दुनियादार की कोशिशें हों तो फल दे देंगी, अगर मोमिन खुदा से गाफिल हो जाए और इन्हिसार करने लगे अपनी ताकत पर, तो ये एक मुस्तकिल गहरा सबक है आपके लिए कि उसको फिर खुदा ताला उन कोशिशों को फल से महरूम कर देगा। तारीख इस्लाम के मुताले से भी यही सबक मिलता है, तारीख अहमदियत के मुताले से यही सबक मिलता है, और रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप बारीक नजर से मुतालिया करें अपने हालात का, तो आप जरूर इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि आप चूंकि अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह आपका अपने साथ गहरा ताल्लुक देखना चाहता है, इसलिए आपकी आम कोशिशों को अपने फजल के साथ इस गहरे राबते के साथ मुंसलिक कर चुका है कि वो राबता आप टूट नहीं सकता। अगर आप तोड़ेंगे तो महरूम रहेंगे किसी न किसी बरकत से। बसा औकात मैंने देखा है कि बाज कोशिशें बहुत अच्छी की जाती हैं, बड़ी मेहनत से की जाती हैं, अगर गफलत से दुआ से तवज्जो जरा हट जाए या कम हो जाए तो उल्ट नतीजे जाहिर होने शुरू हो जाते हैं, और जो ही दुआ की तरफ तवज्जो मबजूल होती है वो सारी बातें ठीक बैठने लग जाती हैं। तो इसलिए जमात अहमदिया के लिए बहरहाल जरूरी है कि दुआ से गाफिल ना हो। आपको लाजिमन अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी नसीब होगी, क्योंकि खुदा का यह वादा है। खुदा ताला ने जो आयात मैंने तलावत की हैं उनमें कती वादा किया है कि आखिरत जो है और आकिबत ये मुत्तकीन के लिए है, और उन्हीं लोगों को नसीब होगी। तिल्क दारुल आखिरत नजलु हालिल्लज़ीना ला युरीदूना उलूवन फिल अर्ज़ वला फसादा। उन लोगों को नसीब होगी जो जाती बड़ाई की खातिर दुनिया में हुकूमतों पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करते, जो इस बात से बेनियाज हैं कि उनकी हैसियत क्या है, उनका तवक्कुल अपने रब पर होता है। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, ये एक जारी कानून है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अंजाम कार बहरहाल मुत्तकीन की फतह होती है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। तो इस पहलू से हमें तो किसी हुकूमत में कोई दिलचस्पी नहीं है, दुनिया के पर्दे पर किसी हुकूमत में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ एक दिलचस्पी है कि अल्लाह की हुकूमत कायम हो। हमारा ताज रिजवान यार का ताज है, हमारी बादशाहत इलाही बादशाहत है, और इस मामले में हमारा रकीब ही और कोई नहीं, तन्हा हम मैदान में हैं, और किसी की ख्वाहिश ही नहीं। आप दुनिया में जितने मजहब के नाम पर कोशिशें करने वाले हैं उनका मुतालिया करके देख लें, दरअसल वो उलूव चाहते हैं, जाति बड़ाई चाहते हैं, कोई ना कोई और दुनियावी मकसद रखकर मजहब के नाम पर फसाद बर्पा करते हैं। उनके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने इसी आयत में तजिया भी फरमा दिया कि अगर उलूव चाहोगे तो उसके नतीजे में बनी नौ इंसान की भलाई जाहिर नहीं होगी, खा वो दुनियावी मकसद हो या कोई और मकसद, उसका कोई भी नाम रख लिया जाए, अगर नीयतों में ये ख्वाहिश मौजूद है कि हम गलबा पा जाएं दूसरों के ऊपर, दूसरों के अमूर की बागडोर हमारे हाथ में आ जाए, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये नीयत इस बात की जामिन हो जाएगी कि तुम फसादी हो, क्योंकि उलूव की खातिर कोशिश करने वाले बनी नौ इंसान की भलाई नहीं किया करते, हमेशा फसाद बर्पा किया करते हैं। तो इस पहलू से जमात अहमदिया मुस्तस्ना है कुल्लियतन, क्योंकि जमात अहमदिया उलूव की ख्वाहिश ही कोई नहीं रखती, वो सिर्फ अल्लाह की रजा की ख्वाहिश रखती है, वो खुदा की हुकूमत के क्याम के लिए कोशां है, वो ये चाहती है कि किसी तरह रिजवान यार हासिल हो जाए। बस इस बातों पर, इन सिफात पर अगर आप कायम रहेंगे और पूरे सब्र और वफा के साथ कायम रहेंगे तो अल्लाह ताला की ये खुशखबरी है वलाकिबतुल मुत्तकीन, लाजिमन अंजाम कार आप फतायाब होंगे। अल्लाह ताला हमें ये फतह अता फरमाए।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
कल असर की नमाज के बाद वापस आते हुए ख्वाजा अब्दुल मोमिन साहब ने तवज्जो दिलाई कि अब फिर गर्मी बहुत बढ़ गई है, बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, तो दोबारा दुआ की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और अहबाब जमात को तलकीन करनी चाहिए। चुनाचे मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह कल खुतबे में तलकीन करूँगा, लेकिन सुबह जब बादल देखे तो मैं मुतरद्दिद हो गया। मुझे ख्याल आया कि अब अगर तलकीन की तो बाज़ कमज़ोर ईमान वालों के लिए ठोकर का मुजिब ना हो, वो अपनी बेवकूफ़ी नादानी से ये ना समझने लगें कि जमात अहमदिया इसी किस्म की दुआएं करती है, बादल देख लिए तो तलकीन कर दी और बाद में कह दिया दुआ कबूल हो गई। ये गौर करते हुए ख्याल आया कि तलकीन ना करूं, फिर खुदा ने तवज्जो इस तरफ फेरी कि यह बात भी कामिल इज्ज के खिलाफ है। बात यह है कि हजार बादल आए हुए भी बगैर बरसे चले जाया करते हैं, हजार इलामतें रह खुदा की रहमत की जाहिर हो भी जाएं तो अल्लाह के फजल के बगैर वो अमल में नहीं ढलती। इसलिए कतअ नजर इसके कि कोई ठोकर खाता है नहीं खाता, तुम अपने खुदा से अपने मामलात साफ और सीधे रखो और इज्ज के मुकाम से ना हटो। चुनांचे मैंने इरादा किया कि लाजिमन तहरीक करूंगा, और उसके साथ ही मुझे अपना एक पुराना वाकया भी याद आ गया, शायद पहले भी बता चुका हूं लेकिन है दिलचस्प। एक दफा हम डलहौजी गए इस नीयत से कि बर्फ देखेंगे, 6-7 बच्चे थे, हजरत मुस्लिम मऊद ने हमारे साथ एक मुरब्बी भेज दिए मुंतजिम और हमें बर्फ देखने के लिए भिजवा दिया। जब हम जा रहे थे तो रस्ते में एक पुराने पहाड़ी आदमी ने, जो हमारे साथ ही बस में बैठा हुआ था, उसने बातों के दौरान कहा कि आजकल मौसम ऐसा है कि बर्फ जरूर पड़ती है, बादल आ जाए सही बर्फ जरूर पड़ जाएगी, लेकिन अगर बादल ना होंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी नादानी में اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نادانی نے ایک بڑا گہرا سبق عطا کر دیا، اس لیے بری نادانی نہیں تھی. اپنی نادانی میں ہم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میاں، بادل تو بھیج دے، برف ہم آپ ہی بنا لیں گے. اور 7 دن وہاں ٹھہرے ہیں، سورج کا منہ نہیں دیکھا، مسلسل بادل رہے اور اولے برسے ہیں، برف کا ایک فلیک نہیں گرا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بادل، یہ علامتیں کیا چیزیں ہیں، میرے غلام در ہیں، میرے تابع فرمان ہیں، میں حکم دوں گا تو کچھ کریں گے، اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. تو اس وقت سے ایک مستقل سبق مجھے میسر آ گیا کہ اصل بندے کا مقام یہ ہے کہ وہ دعا کرے اور ظاہری علامتوں پر انحصار نہ کرے. بس اب پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رحم اور فضل کی بارش برسائے، موسم کو غربا، خصوصاً غربا کے لیے تبدیل کر دے. عمراء کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سہولتیں حاصل ہوتی ہیں. یہاں ربوہ میں جو میں نے جائزہ لیا ہے، غربا کے مکان کی ایسی ناگفتہ بے حالت ہے کہ بہت ہی خطرناک حالات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ان کا نام لے کر اگر دعا کریں تو شاید امیروں کو بھی فائدہ پہنچ جائے، ساتھ ہی وہ تو پہنچنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.